रात, हवेली के भीतर। रात धीरे धीरे हवेली पर उतर आई थी। दिन भर की गर्मी अब भी आंगन की मिट्टी में कैद थी, लेकिन हवा में हल्की सी ठंडक घुल चुकी थी। पुराने पीले बल्ब की रोशनी दीवारों पर लंबी टेढ़ी मेढ़ी परछाइयां बना रही थीं, ऐसी परछाइयां जो कभी स्थिर नहीं रहतीं, जैसे कोई चुपचाप चल रहा हो बिना आवाज किए। शकुंतला अपने कमरे में खड़ी थी। कमरे में हल्की रोशनी थी, अलमारी का दरवाज़ा आधा खुला था और आईने के सामने वो साड़ी ठीक करने की कोशिश कर रही थी। साड़ी का पल्लू उनके हाथों में था, लेकिन उंगलियां आज सामान्य नहीं थीं। कपड़ा कंधे पर जमाती, फिर रुक जाती, पिन लगाती, फिर निकाल लेती। उनका दिमाग कहीं और अटका हुआ था। सड़क का वो दृश्य, वो आदमी, भारी दाढ़ी, शांत खड़ा शरीर और वो नज़र जो बस एक पल को ठहरी थी पर मन में गहरी छाप छोड़ गई थी। क्या वही था? सवाल उनके भीतर अचानक उभर आया। उन्होंने आंखें बंद कर लीं। वो चेहरा फिर सामने आ गया, स्पष्ट नहीं फिर भी बेचैन करने वाला। नहीं, उन्होंने खुद से धीमे में कहा, शायद वहम है, हर आदमी शक की वजह नहीं बनता। आईने में उन्होंने अपने चेहरे को देखा, थोड़ा थका हुआ पर संयम में बंधा हुआ, एक माँ का चेहरा, एक ऐसा चेहरा जो घर को संभालने की आदत में खुद को पीछे रख देता है। पर मन, मन मानने को तैयार नहीं था। अगर वही हुआ तो, अगर, वो वाक्य अधूरा रह गया, जैसे उनके भीतर ही अटक गया हो। शकुंतला ने हल्के से सिर झटका, जैसे जबरदस्ती उन ख्यालों को दूर करना चाहती हों। बेकार की सोच, उन्होंने खुद से कहा, दिन भर की थकान है बस। वो अलमारी के पास गईं, पिन उठाई, फिर से साड़ी ठीक करने लगीं, लेकिन हाथ फिर रुक गए। वही बेचैनी, वही अनकहा डर फिर लौट आया। उन्होंने मेज से फोन उठाया, स्क्रीन पर उंगली रुकी, फिर एक नंबर डायल किया। रिंग गई, एक बार, दो बार, तीन बार, कोई जवाब नहीं। उनकी भौहें सिकुड़ गईं। फोन क्यों नहीं उठा रहा, उन्होंने बुदबुदाकर कहा। उंगलियां फिर से स्क्रीन पर चली गईं। दूसरी बार कॉल, रिंग, रिंग, फिर वही खामोशी। उन्होंने फोन नीचे रख दिया। कमरे में अचानक सन्नाटा और गहरा लगने लगा। दीवार पर टंगी घड़ी की टिकटिक अब साफ सुनाई दे रही थी, हर सेकंड जैसे याद दिला रहा हो कि समय आगे बढ़ रहा है, लेकिन उनका मन वहीं अटका हुआ है। शकुंतला ने एक लंबी सांस ली। शायद जरूरत नहीं है अभी, उन्होंने खुद को समझाया, सब ठीक है। कमरे का दरवाजा धीरे से खोलकर वो बाहर निकली और हॉल की ओर बढ़ी। हॉल, हंसी की रोशनी। हॉल में कदम रखते ही माहौल बदल गया। यहां रोशनी ज्यादा थी और आवाज भी। सोफे पर रत्ना देवी बैठी थी, पीठ पीछे तकिया लगाया हुआ, पैर सामने छोटे से स्टूल पर टिके हुए। उम्र ने उनके शरीर को थोड़ा झुका दिया था, लेकिन चेहरे की चमक और आंखों की शरारत अब भी वैसी ही थी। उनके ठीक बगल में रम्या, रम्या सोफे पर सिमट कर बैठी थी, एक किताब गोद में खोली हुई, कभी पन्ने पलटती, कभी नानी की ओर देखकर शरारती मुस्कान फेंक देती। नानी सुनो, रम्या हंसते हुए बोली, एक आदमी डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब मुझे भूलने की बीमारी है। वो जरा रुकी, फिर खुद ही हंस पड़ी। डॉक्टर बोला कब से, आदमी बोला कब से क्या? रत्ना देवी ठहाका मारकर हंस पड़ी, उनका कंधा हंसी के साथ हिल गया। अरे बस कर पगली, उन्होंने हंसते हंसते कहा, पेट में दर्द हो जाएगा हंस हंस कर। रम्या भी खिलखिला उठी, उसने किताब का पन्ना पलटा। अच्छा ये वाला आखिरी, पक्का? शकुंतला वहीं हॉल में पर रुक गई। उन्होंने रम्या को देखा, उसकी खुलकर हंसती आंखें, वो बेफिक्री, वो आवाज, वही बच्ची जो कुछ घंटे पहले तक डर और सवालों से घिरी हुई थी और अब नानी के पास बैठकर सब भूल चुकी थी। रत्ना देवी ने रम्या के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। तू रोज ऐसे ही हंसती रहा कर, उन्होंने कहा, घर में रौनक बनी रहती है। हाँ नानी, रम्या ने मुस्कुराकर कहा, आप हंसती हो तो और अच्छा लगता है। शकुंतला की आंखें नम हो गई, बिना आहट के, मेरे बच्चे, उनका दिल भर आया, ये सब सिर्फ मेरे बच्चे हैं। उस पल, सड़क, वो आदमी, वो सवाल, सब धुंधले पड़ गए, सामने बस यही सच था, एक माँ की दुनिया। रम्या ने सिर उठाकर शकुंतला को देखा, माँ आप कब से खड़ी हो? बस अभी, शकुंतला ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पढ़ाई हो गई? थोड़ी देर बाद, रम्या ने किताब बंद करते हुए कहा, नानी के साथ टाइम ज्यादा जरूरी है। रत्ना देवी ने आंख मारी, देखा समझदार है मेरी पोती। शकुंतला आगे बढ़कर सोफे के पास आ गई, उन्होंने रम्या के सिर पर हल्का सा हाथ रखा, वो स्पर्श जैसे खुद को यकीन दिलाने के लिए, सब ठीक है, उन्होंने मन में कहा, मैं यहीं हूं। हॉल में हंसी गूंजती रही, घड़ी की टिकटिक अब परेशान नहीं कर रही थी, रात ने हवेली को पूरी तरह ढक लिया था, लेकिन उस पल शकुंतला के दिल में बस एक ही एहसास था, मेरे बच्चे हैं और ये सिर्फ मेरे हैं। विश्वनाथ का कमरा, वही रात। कमरे में हल्की सी पीली रोशनी फैली थी, खिड़की आधी खुली थी, जिससे बाहर की गर्म हवा धीरे धीरे अंदर आ रही थी। शायद आज कुछ ज्यादा ही उमस थी, इसीलिए विश्वनाथ बिना शर्ट के बिस्तर पर लेटा हुआ था। आंखें बंद थीं, सांसें गहरी और नियमित, पर सच में सो रहा था या बस सोने की एक्टिंग कर रहा था, ये कहना मुश्किल था। दरवाजा बिना आवाज किए खुला। शामली अंदर आई। उसने आदतन अलमारी की तरफ देखा, फिर धीरे से कपड़े निकाले। उसकी हर हरकत में सावधानी थी, जैसे कोई सोए हुए सन्नाटे को जगा ना दे। वो बाथरूम में बदलने चली गई। एक बिल्कुल साधारण साड़ी, कोई बनाव श्रृंगार नहीं, बस घर की रात। कुछ पल बाद वो वापस आई और बिस्तर के दूसरे सिरे पर बैठ गई। तभी उसकी नजर अनजाने में विश्वनाथ के खुले बदन पर चली गई। वो एकदम से नजर चुरा गई। पता नहीं शर्ट उतारकर क्यों सो जाते हैं, वो धीमे से बुदबुदाई। अरे साथ में एक औरत भी होती है, आदमी समझते क्यों नहीं। आवाज में शिकायत कम, संकोच ज्यादा था। विश्वनाथ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, वो सचमुच सो चुका था। शामली लेट गई, दोनों के बीच हल्का सा फासला रखते हुए, लेकिन आज कुछ अलग था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों उसकी नजर बार बार उधर खिंच रही है। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जो शर्म और चिंता के बीच उलझी हुई थी। उसकी आंखें अनायास ही विश्वनाथ के सीने पर ठहर गईं। वहीं दिल के पास एक बड़ा सा निशान, एक्सीडेंट की याद। आज ही तो उसने घाव की पट्टी खुली छोड़ी थी, ठीक से देख लिया था वो जख्म। उंगलियों से सहलाते हुए उसे डर लगा था, कहीं दर्द तो नहीं हो रहा। शामली ने करवट बदली, आंखें बंद कर ली। सब ठीक है, उसने खुद से कहा, ये बस थकान है। कुछ ही देर में उसकी सांसें भी धीमी हो गईं। कमरे में अब सिर्फ पंखे की आवाज थी और दो जिंदगियों की खामोश मौजूदगी। रात गहरी होती चली गई।